ओम शांति। एक ब्राह्मणी ने एक बार अपना एक घर बनाया, एक बहुत विशाल के पास, विशाल भवन के पास। और वो जो भवन था एक ग्रंथालय था, लाइब्रेरी। तो एक ब्राह्मणी ने अपना घर उस ग्रंथालय के बाहर किसी दीवार पर बनाया, और उस ग्रंथालय की खिड़की से वो देखा करती थी कि अंदर कौन कौन आते हैं। तो उसे दिखते थे कि बहुत ज्ञानी लोग आते हैं। उसकी भी इच्छा होती थी कि मैं भी किताबें पढूं, मैं भी शास्त्र पढूं, दर्शन शास्त्र, और थोड़ी ज्ञानी बन जाऊं भ्रमरियों के समाज में। और जो दूसरी भ्रमरियां होती थी, जो कि इतना चिंतन नहीं करती थी, उसको उन पे दया आती थी, घृणा भाव से देखती थी उनको कि इनका ज्ञान का चिंतन थोड़ा कम है। और उसके अंदर एक अपना ही सूक्ष्म अहंकार था कि मैं थोड़ी ज्ञानी हूं। और जब वो खिड़की से देखती थी, दरवाजे से देखती थी, इतने बड़े बड़े फिलोसोफर्स, शास्त्रज्ञ, ज्ञानी लोग उस लाइब्रेरी में आकर इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, तो उसकी इच्छा होती थी मैं भी पढ़ूं। तो उसने फिर एक दिन अंदर घुसकर कुछ किताबें पढ़नी चालू की। पहले उसने छोटे बच्चों की किताबों से चालू किया, फिर धीरे धीरे विज्ञान की किताबें पढ़नी चालू की। और उसे जब विज्ञान भी ज्यादा समझ में आने लगा, फिर उसने फिलॉसफी की किताबें पढ़नी चालू की। किसने? भ्रमरी ने। और फिर ऐसे करते करते एक दिन उसके हाथ में फिजिक्स, और उसमें भी फिजिक्स की सब ब्रांच, उड़ियान विद्या जो होती है, एरोडायनामिक्स, उड़ना कैसा, उसकी किताब उसके हाथ में आ गई। और जैसे जैसे वो ज्यादा ज्ञानी बनते जा रही थी, वो देखती थी उसके मित्रों को, अपने साथियों को, कितना टाइम वेस्ट कर रही है, जबकि समय इतना बहुमूल्य है, ज्ञान इतना विस्तार, इतना पड़ा हुआ है, और ये लोग समय बर्बाद कर रही है। और उसके हाथ में एक दिन वो उड़ना कैसा, कैसे उड़ा जाए, उसकी किताब आ गई। और किताब के एक एक शब्द और एक एक वाक्य उसके अंदर समाते गए, जो 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 दार्शनिक जो कहता था, जो फिलासफर जो कहता था, और जो वैज्ञानिक जो कहता था, जो साइंटिस्ट ने जो रिसर्च लिखे थे, वो सब पढ़कर उसे लगा कि बस यही ज्ञान है। और जब उसके हाथ में वो एरोडायनामिक्स की किताब आई, तो उसमें उसने पढ़ा कि भ्रमरिया जो होती है, उसका शरीर बड़ा होता है और उसके पंख छोटे होते हैं। तो एज पर फिजिक्स, भ्रमरी कभी उड़ नहीं सकती, जितनी उसकी लंबाई है, ऊंचाई है। और सारे तर्क दिए वैज्ञानिक ने कि ये सारे तर्क के हिसाब से भ्रमरी जो है वो कभी नहीं उड़ सकती। तो उसे दिल को लग गई वो बात, उसको लगा मैं तो उड़ रही हूं, तो ये क्या हो गया। फिर उसको लगा कि मेरे जो साथी उड़ रहे, शायद अज्ञानवश उड़ रहे, इनको तो उड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि किताब में लिखा है कि भ्रमरी नहीं उड़ सकती, क्योंकि उसके पंख छोटे हैं और उसका शरीर बड़ा है, उसके पैर छोटे छोटे हैं, तो उड़ेगी कैसी। और उस दिन से उसका उड़ना बंद हो गया, क्योंकि किताब की वो लिखी बात दिलो दिमाग में छप गई। और किताब गलत कैसे हो सकता है, किताब तो सही है। और फिर वो फिर रेंगना चालू किया उसने, उसका जो छत था या उसका जो घर था, रेंगते रेंगते अपने घर के पास जाती थी, उसका उड़ना एकदम ही बंद हो गया, क्योंकि किताब में लिखा था नहीं उड़ सकती मतलब नहीं उड़ सकती। और जब वो देखती थी दूसरे साथी, दया आती थी, बेचारे अज्ञान के कारण उड़ रहे, जब इन्हें ज्ञान हो जाएगा कि नहीं उड़ सकती, तो उड़ना बंद हो जाएगा। और फिर थोड़ा दुखी भी थी कि मैं अब उड़ नहीं सकूंगी, क्योंकि किताब में लिखा है नहीं उड़ सकती, सारे वैज्ञानिकों ने, साइंटिफिक रिसर्च कह रहा है कि नहीं उड़ सकती। और एक दिन सुबह सुबह बैठी थी, तो उधर से एक पक्षी उड़ रहा था, सुबह का समय था, उसे भी अपने नाश्ते की फिक्र थी पक्षी को, और उसने जोर से झड़प, छलांग लगाई उस भ्रमरी पर खाने के लिए, और जैसे ही वो पक्षी उसके ऊपर आया, तुरंत वो भ्रमरी एकदम से उसका जो खोई हुई शक्ति थी आ गई, और वो उड़ना चालू कर दिया उसने, और उड़ते उड़ते अपने को बचा दिया। और जब उड़ने लगी और जब बचाया, और उसके बाद फिर सोचने लगी मैं उड़ी कैसी, जबकि मुझे नहीं उड़ना चाहिए था, जबकि किताब में लिखा है कि मैं उड़ नहीं सकती, मेरी क्षमता ही नहीं उड़ने की। परंतु उसे फिर याद आया कि उसने मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी की भी एक किताब पढ़ी थी, जिसमें लिखा था कि जब मेंटल ब्लॉकेजेस आ जाते हैं तब क्षमता खो जाती है। तो उसे लगा शायद यह ज्ञान ही मेंटल ब्लॉकेज था जो बीच में आ गया था, और उसके वजह से मैं उड़ नहीं सकती थी। और उस दिन से उसने पढ़ना बंद कर दिया वो सारे शास्त्र जिसमें कुछ ऐसी भ्रांत चीजें लिखी थी। तो ये कहानी है एक भ्रमरी की, जो बहुत उड़ती थी, परंतु कहीं से कुछ सुन लिया और कहीं से कुछ पढ़ लिया, और उसके अंदर कुछ एक ऐसा मेंटल ब्लॉक आ गया कि उसका उड़ना ही बंद हो गया। कहीं से कुछ परचिंतन और प्रदर्शन की बातें देख ली और सुन ली, और चलते चलते इतने विघ्न सूक्ष्म में मन में आ गए कि वो विघ्न के आने के बाद उसकी क्षमता ही खो गई, और उसने मान लिया कि अब वो जो पुरुषार्थ जो मैं पहले करती थी शायद अब नहीं हो सकेगा। इसके लिए रेंगना चालू किया। पता था ये रेंगना है, पर करे क्या, शक्ति नहीं है, कहीं वो मैं तो नहीं। आज सुबह की साकार मुरली, बाबा ने कहा तुम हो सच्ची सच्ची भ्रमरिया, वैरायटी कीड़ों को भू भू कर कर देवता बनाने वाली हो। एक भ्रमरी जो होती है उसकी बहुत सी विशेषताएं होती है। सबसे पहले तो उड़ना 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, भू भू करती है, बजिंग 200 बार से लेके तो 1200 बार तक 1 मिनट में फ्लैप करती है, अपने पंखों को फड़फड़ाती है, उसके बाद वो आवाज आता है। सबसे बड़ी विशेषता भ्रमरी की है वो दूर दूर तक जाती है फूलों की तलाश में, एक दिन में लगभग 50 से 100 फूलों के पास जाती है, परंतु किसी भी फूल में फंसती नहीं। संडे की मुरली टीचर्स अर्थात दूसरों को स्वयं में अटकाने वाली नहीं, दूसरों को स्वयं में फंसाने वाली नहीं, और ना ही दूसरों में फंसने वाली। किसी भी फूल पर अपना अधिकार नहीं रखती, आधिपत्य नहीं, पजेसिव नेचर नहीं है। हजारों के संपर्क में आती है, परंतु पराग लिया और चल दी। अनासक्त वृत्ति, ये भ्रमरी की निशानी है। दूर दूर तक सत्य की खोज करना भ्रमरी की निशानी है। पराग लेगी, भ्रमरी के बहुत सारी वैरायटीज है, 40,000 से भी ज्यादा, 20 मधुमक्खी से लेकर तो बम्बल बी और ऐसी हजारों, बिटल बी और ब्लैक बी, अलग 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 है। और एक विशेषता है अथक, कहते हैं वो कभी सोती नहीं है, योगी से लक्षण है उसके, कभी नहीं सोती, निरंतर फड़फड़ाती रहती है, आवाज करती रहती है, घूमती रहती है, और अपना छत्ता बनाती है, कॉलोनी, हाइव, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स है उसमें, उसमें ये गुण है एडमिनिस्ट्रेशन का। क्वीन मुख्य होती है, वर्कर्स मेल्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स पूरे होते हैं उसमें, कब कहाँ किसको कहाँ कैसे रखना। और ये जो भू भू करना है, जो लार्वा होता है उसको वो जेली खिलाती है, पालना करती है उसकी, हनी हनी निकलता है, वैक्स निकलता है, उस वैक्स से अपना छत्ता बनाती है। वो जो पराग, वो जो मकरंद फूलों से लेती है, उसको अंदर लेती है। उसके पास ऐसी कुछ ग्रंथियां होती है जिसको वो डाइजेस्ट कर पाती है। ये सारी विशेषताएं एक भ्रमरी की है। बाबा ने आज कहा, तुम हो सच्ची सच्ची भ्रमरिया। तो भ्रमरियों को क्या करना पड़ेगा? भू भू करना पड़ेगा। और संसार की जो आत्माएं, उन्हें कीड़ों से देवता बनाना पड़ेगा। इतना बड़ा कार्य है। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी एक रूहानी भ्रमरी भू भू करे? ऐसी आठ चीजें हैं जिसकी हमें दिन भर भू भू करना है, इससे पहले कि हम दूसरों को जगाएं, दूसरे कीड़ों को देवता बनाएं, या हम आप समान भ्रमरी बनाएं। ये भू भू हमारे अंदर होती रहे, क्योंकि जब तक ये भू भू हमारे अंदर नहीं, हम दूसरों को कैसे बता सकेंगे? और भ्रमरी में और एक विशेषता होती है। उदाहरण दिया है बाइबल में। बाइबल का एक प्रसिद्ध राजा है ओल्ड टेस्टामेंट में, किंग सोलोमन। उसके जीवन में एक उदाहरण दिया है। इथियोपिया नाम की एक रानी होती है जिसका उससे बहुत प्यार है, परंतु वो उससे शादी ऐसे नहीं करेगी, पहले उसकी परीक्षा लेना चाहती है। सभी से सुन रखा है कि राजा सोलोमन सबसे जस्ट सबसे अच्छा राजा है। वो उसके राज्य में उसके दरबार में एक दिन जाती है दो फूल लेकर, और उससे पूछती है कि बताओ हे सोलोमन, इन दोनों फूलों में से सही फूल कौन सा है, असली कौन सा है और नकली कौन सा है, और दोनों फूल दिखने में एक समान, जरा भी भेद नहीं, वैसे ही दिखते हैं, और बिना सामने आए बस वहीं से बताओ असली ये है या ये। तो सोलोमन कहता है, खिड़कियां खोल दो। खिड़कियां खोल दी जाती है, किसी को दिखता नहीं, खिड़कियों से कुछ आया भी। और थोड़ी देर के बाद वो कहता है, ये जो है दाएं हाथ वाला, ये असली है और ये नकली है। वो रानी पूछती है, आपने कैसे जाना? वो कहता है, जैसे ही खिड़कियां खोली, भवरे भवर भवरा, और उसी की माता होती है भवर भवरी या फिर भ्रमरी, वो हमेशा असली फूल पर आकर बैठती है। एक भ्रमरी में 172 रिसेप्टार्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में एक एक सेल में रिसेप्टार्स होते हैं। उस रिसेप्टार के आधार से वो पहचान लेती है किस फूल में पराग जाता है, रस जाता है, कौन सा असली है और कौन सा नकली है। हर एक की नब्ज देखती है, जो वो है सच्ची सच्ची भ्रमरी। और व्यक्त महावाक्य है बाबा के, अपने आसपास वाले पत्तों को जानो क्या है, जिनके बीच रहना है, जिस डिपार्टमेंट में रहना है, जिस विभाग में रहना है, जिस स्थान पर रहना है, जिस सेंटर पर रहना है, उसके में रहने वाली आसपास की आत्माओं का स्वभाव संस्कार पता रहना चाहिए। नहीं तो बार बार हर्ट, बार बार दुखी, बार बार उदास, बार बार उठना रूसना, यदि उसका स्वभाव हमने नहीं जाना। हम रोज टाइम पर जाते हैं, एक दिन लेट हो गया और कोई कह दे ये तो रोज ही लेट आता है, तो फिर दुख होगा, हर्ट होगा। एक दिन गलती हो गई और दूसरा कहे ये तो हमेशा ही गलती करता है, फिर हर्ट होगा, फिर प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे हमारी निष्ठा पर, क्योंकि हम तैयार ही नहीं थे, हम पर ऐसा अविश्वास जताया जाएगा। कभी नहीं गए कहीं, और एक दिन कहाँ कहीं जाना है, और कोई कह दे अगर तुम वापस नहीं आए तो, इतने दिन की साधना, तपस्या, निष्ठा, प्रेम, त्याग, बहुत मेहनत करके कुछ बनाया, रात भर मेहनत की, रंगोली बनाई, सुबह आके कोई कहते ये भी कोई रंगोली, और फिर हम सोचे रात भर ऐसी गवा दी और ये मिला। आसपास के पत्तों को जान लेना है, जो इर्द गिर्द आत्माएं हैं, जिनके जिनसे सबसे ज्यादा काम पड़ता है, उनको जान लेना। और एक मधुमक्खी या भ्रमरी की विशेषता है शहद, स्वीट स्वीटनेस उठाती है हर हर फ्लावर से। महात्मा बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को कहा था, तुम्हें भिक्षा नहीं लेनी है, मधुकरी। मधुकरी पता है? मधुकरी, एक एक सन्यासी एक एक मधुमक्खी जैसा है, एक एक भ्रमर एक एक भंवर, एक एक भंवरा एक एक भंवर, भ्रमरी मधुमक्खी। उसका काम है जिस भी स्थान पर जाओ, जहां कहीं बगीचा हो, पहले तो फूलों को ढूंढो और उस फूलों में से वो पराग, वो मकरंद, वो रस ले ले, जो विशेषता है उसको उठा ले, बाकी छोड़ दे। और किसी में फंसे ना, ऐसा नहीं कि ये फूल बहुत सुगंधित है, ऐसा नहीं, ये भाई बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छी है, कितना भी किसी को अच्छा रहने दो। नॉन पजेशन, नो अटैचमेंट। काम हुआ, तुम उधर हम इधर, इसको भूलना नहीं है। और भ्रमरी जो होती है बहुत फास्ट जाती है, बहुत फास्ट सब अपने काम करती है। ये सारी विशेषता है। भगवान कह रहे हैं तुम हो सच्ची सच्ची भ्रमरिया। सबसे पहली भूगो करनी है ज्ञान की, परंतु इससे पहले कि हम ज्ञान की भूगो करें, वो ज्ञान की बुलबुल अंदर वो टिकलू टिकलू करती रहे, वो अंदर हमारे अंदर ज्ञान चिंतन ज्ञान मनन होता रहे। यदि हमारे अंदर ही ज्ञान मनन नहीं, चिंतन नहीं, तो हम दूसरों को कैसे सिखाएंगे? केवल स्थूल सेवा करते रहना करते रहना करते रहना, और ज्ञान सेवा न करना, ज्ञान चिंतन न करना आलस्य की निशानी है। केवल स्थूल सेवा करते रहना और ज्ञान का श्रेष्ठ चिंतन, ज्ञान का श्रेष्ठ मनन, ज्ञान का श्रेष्ठ अध्ययन, ज्ञान की चर्चा न करना, हमारे मुख से जो सुबह की मुरली चली थी वो नहीं निकलना सारे दिन भर, अपराध है। और अपराध की सजा है स्थिति का गिर जाना। सेवाओं को ज्यादा महत्व दे दिया और चिंतन को कम महत्व दिया, सेवाओं में ज्यादा डूब गए और योग को कम महत्व दे दिया, सेवाओं में इतने बह गए कि सेवाओं के जंगल में पता ही नहीं चला कि योग कहाँ खो गया और तपस्वी कहाँ खो गया। दंड मिलेगा, और दंड होगा स्थिति का गिर जाना, और दंड होगा अमृत वेले कोई अनुभव ना होना, और दंड होगा मुरली सुनना परंतु इस चिंता में है कि कब पूरी होती है। दंड मिलेगा नुमा शाम का योग न होना, दंड मिलेगा रात्रि सोते समय दुख पश्चाताप पीड़ा दर्द, संबंधों में कड़वाहट, सेवा इतनी सारी की महान आत्माओं की परंतु फिर भी संतृप्ति नहीं है, क्योंकि मन व्यर्थ से भरा है, मन में परचिंतन चल रहा है, परदर्शन चल रहा है। जब तक हम स्वयं नहीं जाते, वो ज्ञान की भूख हमारे अंदर नहीं होती, हम सच्ची सच्ची भ्रमरी यानी झूठी भ्रमरिया है, सूडो बीज झूठी। अच्छा लगता है कहने को आज का ना, जिनको सेमी निश्चय है, सौतेले, जीरो निश्चय नहीं, सेमी सौतेले है, जो धक्के खा रहे बाप उनको नहीं मिलता। ये बात बाबा ने भक्ति मार्ग वालों के लिए कही है, परंतु ज्ञान मार्ग वालों के लिए भी है, जो पुराने उनके लिए भी है, जो यहां ही धक्के खा रहे हैं उनको भी बाप नहीं मिलता, उनको भी भगवान अमृत वेले नहीं मिलेगा। कमरे में बैठे हैं, ट्रांसलाइट सामने है, परंतु मिलन इतना सस्ता नहीं है कि किसी स्थान पर जाओ और बैठो और मिल जाए। फिजिकल मिलन नहीं है, अव्यक्त मिलन है। अव्यक्त मिलन के लिए स्थिति अव्यक्त चाहिए। किसी स्टेज पर जाने से कभी भगवान से मिलन नहीं होता है। मिलन का संबंध स्थान डिस्टेंस से है ही नहीं, मिलन का संबंध स्थिति से है। और जहां स्थिति गिर गई वहां काहे का मिलन, और जहां स्थिति गिर गई और जहां श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है सूक्ष्म में, कल की अव्यक्त वाणी थी, हम ब्लड से लिख कर देते हैं बाप को, क्या दिन रात बाप को याद करेंगे। दूसरा, जो कहेंगे करेंगे। तीसरा, हाथ पूरा पकड़ के रखेंगे, भगवान के घर में और भगवान के सामने है और फिर भी हाथ छूटा हुआ है और दिखाई केवल हमको देता है, दूसरों को नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हाथ कोई स्थूल तो है नहीं। सबसे पहला भगवान से प्यार अर्थात उसके ज्ञान से प्यार, और उसके ज्ञान से प्यार अर्थात खाली मुरली लिखना नहीं, मनन चिंतन। वो गाय सबसे ज्यादा दूध देती है, कौन सी? जो उगाड़ती है, और जो उगाड़ती ही नहीं वो बीमार है, महारोगी। कल्प कल्प के महारोगी भक्ति मार्ग में थे, ज्ञान में आने के बाद में फिर से महारोगी का स्टैंप, कैसी विडंबना है। तब तो कहा था भगवान ने कि तुम वो रोगी हो, ठीक है मान लिया, तब इतना बुरा नहीं लगा। अब ज्ञान में आ गए और फिर भगवान ने स्टैंप लगा दिया महारोगी, क्यों? क्योंकि चिंतन नहीं किया। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर नहीं करते गोया बीमार है। 26 जून 1969, अव्यक्तवाणी। सबसे पहली भूभू है ज्ञान की, दूसरी भूभू है पवित्रता की। भू 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 पवित्रता की होनी चाहिए, अंदर ही अंदर निरंतर जागरण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आ जाए, ऐरा गहरा नत्थु फेरा, टॉम डिक एंड हैरी, और हमारी पवित्रता सूक्ष्म में छीन कर ले जाए। टीचर्स से मुलाकात, अव्यक्त महावाक्य। टीचर्स को सेवा करनी है, बहुत प्यार से सेवा करनी है, परंतु किसी के प्यार में फंसकर नहीं करनी। प्यार से तो करो पर किसी के प्यार में फंस के नहीं, ना ही किसी को अपने प्यार में फंसाओ। और जिसको फंसा रहे हो यदि वो योगी और ब्रह्मचारी है तो महान पाप होगा, क्योंकि साथ साथ दो आत्माओं की पवित्रता खंडित हो रही है। दोनों ही तपस्वी। पवित्रता की भू, पवित्रता की प्रतिज्ञा, पवित्रता का रिविजन, पवित्रता को रोज रोज रिवाइज करना। ऐसा क्योंकि पवित्रता साधना है, एक बार साध लिया, एक बार प्रतिज्ञा ले ली और हो गया काम पूरा, ऐसा नहीं है। पवित्रता प्रतिदिन की साधना है, निश्चय दिन की साधना है। ब्रह्मचर्य का बल वैसे जमा हो ही नहीं सकता यदि उसे साधना के रूप में हम साधक बनकर नहीं करें, वो नहीं सधक सकेगा। प्रतिपल उसका जागरण चाहिए, यह दूसरी भूभु है भ्रमरी की, रूहानी भ्रमरी, भ्रमरी की स्पिरिचुअल मौत, बजिंग मौत। तीसरी है वैराग की भूभु, स्वयं भी वैरागी और दूसरों को भी वैरागी बनाना। स्वयं में भी वैसी ही अनासक्त वृत्ति हो और हमें देखकर दूसरों में भी अनासक्त वृत्ति प्रकट हो, हम कुछ कहे नहीं, बिना कहे ही केवल देखने मात्र से, देखा और वैराग जाग जाए आत्माओं में। पहले तो ब्राह्मण आत्माओं में, क्योंकि ब्राह्मण समाज ही राग में डूब गया है। विलासिता पूर्ण जीवन है यहीं पर, कैसे वैराग की लहर दौड़ाएंगे संसार में जब यही भोग और विलास है। भ्रमरी अर्थात वैरागी, अनासक्त, राग नहीं, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं, एक बाप के अतिरिक्त। कल की मुरली, मैं तुम्हारा सब कुछ हूं, मैं तुम्हारा सब कुछ हूं। शायद इसका अनुभव नहीं है, छोटा सा वाक्य है, सब कुछ अर्थात नो शेयरिंग विथ एनीबॉडी, अर्थात किसी से कोई बातें नहीं, पर्सनल शेयरिंग अर्थात सारे संबंध उसी से, अर्थात लौकिक तो छोड़, लौकिक तो बहुत दूर, अलौकिक से भी दूर। पर यहां तो कुछ कुछ लौकिक में भी फंसे हुए हैं और कुछ कुछ ब्राह्मण आत्माएं लौकिक की सेवा में इतने डूब गए हैं कि तोड़ निभाने के नाम पर अपने मोह का ही पोषण कर रहे हैं। ऊपर से नाम सेवाओं का दे रहे हैं पर अंदर कुछ और, स्वयं से ही छल, दूसरों को छल, दूसरों को हम धोखा दें। एक तो वो है, एक है खुद ही को धोखा दे, कौन पकड़ेगा? अंतर आत्मा को ही धोखा दिया जा रहा है। वैराग, और वैराग तब आएगा जब आत्मा छोटे से बच्चे को दो लड्डू दिए जाए, एक बड़ा है एक छोटा है, कौन सा लेगा? बड़ा, छोटा स्वतः ही छूट गया क्योंकि बड़ा मिल गया। जब आत्मा को बड़ा दिया जाएगा कुछ अतींद्रिय सुख, तभी इंद्रिय सुख छूटेगा, नहीं तो आत्मा की प्यास सुख की है। अमृत वेले यदि उसे अतींद्रिय सुख नहीं दिया तो सारे दिन भर मनुष्य का प्यार वो ढूंढेगा क्योंकि वो अतृप्त है। प्यार चाहिए उसे, प्यार सुख चाहिए, अतींद्रिय सुख नहीं दिया, वंचित रखा, उसकी सजा दिन भर में। प्यार चाहिए फिर व्यक्तियों से, और फिर व्यक्तियों से प्यार, इश्क, मोहब्बत, अलौकिक जीवन में, उस जीवन में नहीं, इधर यहां बंधन, बंधन इस जीवन के सोने के पिंजरे। और वहां आत्मा जो फंसी है उसको कौन बताएगा तुम फंसी हो? उसे तो खुद ही जानना होगा कि मैं फंस चुकी हूं। कौन डायग्नोसिस करेगा उसका? विकारों का डायग्नोसिस करना है, बीमारियों का डायग्नोसिस करने के लिए डॉक्टर बैठे हैं संसार में, पर ये मोह है इसका डायग्नोसिस, जिसको मैं प्रेम कह रहा हूं, ये वासना है जिसको मैं शुद्ध प्रेम कह रहा हूं, ये अहंकार है जिसको मैं कह रहा हूं निमित्त भाव है, ये ग्रीड है जिसको मैं नीड कह रहा हूं, ये क्रोध है जिसको मैं कह रहा हूं ये जरूरी है करना, जस्टिफाई कर रहा हूं अपने विकारों का डायग्नोसिस। तो तीसरी चीज चाहिए और जिसकी भू भू करना है वो है वैराग। निरंतर मन में वैराग के संकल्प गूंजते रहे। चौथा है तपस्या की खुशबू। ऐसा नहीं कि जब पीस पार्क में आएंगे या जब भट्टी का आयोजन होगा, प्रोग्राम बनेगा, तब हम भट्टी करेंगे। हमें अपनी भट्टी रोज करनी है। ये भी बैसाखी हो गई, क्लचेस, व्हीलचेयर, वो वॉकर है, ऑर्गेनाइज किया है और हम पकड़ के चल रहे। जब तक वॉकर है तब तक चलेंगे, वॉकर छोड़ और नीचे गिरे। निराधार पुरुषार्थ चाहिए, कोई व्यक्ति आधार नहीं, कोई भट्टी का आयोजन आधार नहीं। हाँ यदि बीच में होता है तो वो जंप लगाने का आधार है, उड़ जाओ, परंतु आधार नहीं। न व्यक्ति आधार है, न स्थान आधार है, न वैभव आधार है। आज सब कुछ है, कल यहां से निकाल दिया जाएगा, कहीं और बिठा दिया जाएगा, तो रोगे क्या? सब हिल जाएगा। आज जहां है वो स्थान गया, आज जो पद है वो हाथ से गया, जो पोजीशन है वो कल छीन ली जाएगी, और सब होगा। पहले ये यज्ञ ही हिलेगा, इसके पहले कि संसार हिले, परंतु हम ना हिले। चिरा चिरा जुड़ला माधा, मीच माधा संग झालो। मेरे ही सारे अंग जुड़ गए जो इधर उधर भटके थे, मैं ही अपना संग हो गया हूं, मैं निराधार हूं, किसी का आधार नहीं, कोई नहीं चाहिए। सांत्वना देने के लिए, आंसू पोंछने के लिए, कंधा देने के लिए, ताकि उसके कंधे पर अपना सर रखूं और थोड़ा अच्छा लगे। अच्छा लगता है ना कोई यहां हाथ रखता है तो माथे पर? हटा दो उस हाथ को, नहीं चाहिए किसी का हाथ। इस संसार में शक्तिशाली वो है जो अकेले खड़े रहने का सामर्थ्य रखता है। तपस्या, अपनी तपस्या का प्रोग्राम खुद ही बनाना है, खुद ही भट्टी का आयोजन करना है कि आज मेरी शाम को 2 घंटा भट्टी है, 6 से 8, मोबाइल बंद, डिजिटल माया ऑफ, सबसे डिस्कनेक्ट, और खुद ही भट्टी करनी है। स्वयं को गलती के लिए सजा अगर देनी है तो सबसे बड़ी सजा है भट्टी। झोंक दो उसको अपने आप में, तपो उसमें, जलो उसमें, आग लगनी चाहिए, आग, अंगार, आग में हाथ डालने के बाद क्या होता है, एक बार डाल के देखना, अनुभव के लिए जरूरी है। आग लगेगी तो मजा आता है, बाद में पट्टी लगा लेना, आग को देखते रहना। महात्मा बुद्ध के पास कोई आता था संन्यास लेने के लिए, कहते थे जाओ शमशान घाट में 3 मास पहले, सुबह से लेकर रात तक एक ही काम करना है, चिता को जलते हुए देखो, कैसे बचाओगे अपने आप को वैराग से। देखो कैसी चिताएं जल रही है, कैसे लोग रोते हैं, बिलखते हैं, सब झूठा मिथ्या। और वो आग की लपटों को देखो, कैसे आग शरीर को जलाती है। आग बहुत महत्व अच्छी चीज है, ज्वालामुखी योग जैसे, वहां करंट लगता है, आग लगती है, वैसे इधर आग लगनी चाहिए। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक, आत्मा को आग जला नहीं सकती, परंतु योग की अग्नि प्रकट करनी है उसे, तो विकार जल जाएंगे। यहां पर विकार आपको आत्मा को जलाते हैं, वो दूसरी बात है। तो तपस्या, फिर है शक्तियों की भू भू करनी, भू 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 शक्तियों की। कमजोर नहीं बनना है, किसी से भीख नहीं मांगनी है, प्रेम दे दो, अटेंशन दे दो, केयर दे दो, मैं बीमार हूं मुझे देखने आओ, मैं कमजोर हूं मुझे कमजोरी लग रही है, मेरे लिए खाना लेकर आओ, मुझे थोड़ा सा प्रेज करो, मैंने इतनी अच्छी सेवा की, नाम दे दो, थोड़ा अटेंशन दे दो, थोड़ा रिकॉग्निशन, मेरा कहीं प्रिंट, मेरा कहीं फोटो ले लो, मैगजीन में मेरा फोटो नहीं आया जबकि मैंने सेवा की थी, तुम्हारा आया मेरा नहीं आया, मेरा भी आना चाहिए, कौन डालता है फोटो मुझे भी बताना। नहीं ऐसा आपस में बात कर रहे हैं, सेवा तो हम भी बहुत करते हैं और ये तो करती ही नहीं, पर इसका फोटो हमेशा रहता है, आखिर आता कहां से है, ना तो योग में कभी दिखती है ना दिखता है, पर फोटो हमेशा रहता है और सब वीआईपीस के साथ, ये कैसे होता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, नहीं चाहिए, ना तो तुम्हारा फोटो चाहिए, ना तुम्हारी रिकॉग्निशन चाहिए, ना एक्नॉलेजमेंट चाहिए, ना प्रेज, ना पावर, हमारे लिए योग करना। सकाश एजेंसी खोल रखी है किसे, हमारे लिए योग करना, हम तो खोलने वाले हैं, कितना घंटा करना है योग बताओ, जमीन चाहिए, रिट्रीट सेंटर बनाना, क्या बनाना, भाई बीमार है, लौकिक पिता की तबीयत ठीक नहीं है, भाई नौ इंटरव्यू में फेल हो रहा है, बेटा ठीक नहीं है, वो ज्ञान में आ जाए, इसकी बुद्धि का ताला खोलो, उसकी बुद्धि का ताला खोलो, हमारे देश की बुद्धि का ताला खोलो, कभी कहा भगवान ने आरोप लगाया है उस दिन अव्यक्तवाणी, कभी हमारे गांव की बुद्धि का ताला खोलो, कहा कुछ नहीं चाहिए। नो एक्सपेक्टेशन पॉलिसी, नई पॉलिसी देनी है, किसी से कोई अपेक्षाएं नहीं, कोई तारीफ करे, स्तुति करे, पूछे, नहीं चाहिए, अकेले खड़े रहेंगे, और जब अकेले खड़े रहेंगे ना, तब भगवान के प्यार का अनुभव होता है, जब 100 लोगों के पास मांग रहे, झांक रहे, इधर उधर, भगवान का प्यार नहीं आता है, अनुभव तो उसको आता है जो एकांत अकेले में खड़े रहने का सामर्थ्य रखता है। तो तपस्या, अपने अंदर तपस्या की भू 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 करनी, फिर हाँ शक्ति हो, फिर है गुण, अपने अंदर गुणों की भू भू करनी है, कितने गुणों को हमने धारण किया है, एक एक गुणों पर रोज अपने आप को टॉपिक देना है और लिखना चालू करना, डिसिप्लिन लिखो, चिंतन करो लिखो, एक एक टॉपिक पर एक एक दिन लिखना, पंक्चुअलिटी लिखो, हर चीज पर लिखो, ताकि उससे चिंतन चले, विचार की आवश्यकता है, कोई भी चीज अंधश्रद्धा के जैसे माननी नहीं, भगवान ने कहा है मैं जो कहता हूं वो राइट है कि संसार के लोग जो कहते हैं वो राइट है, जज करो, ये ज्ञान अंधश्रद्धा का ज्ञान नहीं है, बस सत्वचन महाराज बाबा ने कहा तो हमने स्वीकार कर लिया, बिल्कुल स्वीकार नहीं करना, क्यों कहा, किस लिए कहा, किस कारण से कहा, रिसर्च करो उसके ऊपर, एक एक पॉइंट को देखो, ये ऐसा भगवान क्यों कह रहा है, मानना ही नहीं तुरंत. डू नॉट बिलीव एनीथिंग बिकॉज यू हैव रेड इट समवेयर. डू नॉट बिलीव एनीथिंग बिकॉज इट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स. डू नॉट बिलीव समथिंग बिकॉज इट हैज बीन हेलोड बाय ट्रेडिशंस. डू नॉट बिलीव समथिंग बिकॉज इट हैज बीन स्पोकन बाय सम ग्रेट मैन. फाइंड द ट्रूथ यूवरसेल्फ. स्वीकार नहीं करो क्योंकि कहीं लिखा है किसी अव्यक्त मुरली में, किसी साकार मुरली में, या किसी और ने कहा है. सत्य को स्वयं खोज करनी है, सत्य की स्वयं सत्यान्वेषी बनना है, ढूंढना है. और सत्य की एक किरण काफी है आत्मा को जगाने के लिए. क्यों इतना सारा ज्ञान है और फिर भी हम अज्ञानी मिसल क्यों है, अंदर में अंधकार क्यों है? सत्य को प्रकट करना है स्वयं के अंदर. उसके लिए विचार की आवश्यकता है, चिंतन की आवश्यकता है. अगला ज्ञान, गुण, शक्तियां, ये तीन, तपस्या, वैराग, पवित्रता. उसके बाद है परमात्म प्रेम. परमात्म प्रेम की बुबू. जो प्यार हमारा भगवान से 10 साल पहले था, 5 साल पहले था, 1 साल पहले था, क्या अभी भी उतना ही है? परमात्म प्रेम की बुबू. इस प्यार को अपने अंदर बढ़ाते हैं. कैसे बढ़ाएंगे? उसका खुद चिंतन कर कि बाबा से प्यार कैसे बढ़े, जो अभी है उससे आगे हो जाए. तो ये टोटल कितने हो गए? 7. ये 7 बूबू, बज बजिंग नॉइस वॉइस अपने अंदर निरंतर होती रहे. ये आवाज निरंतर आनी चाहिए अंदर से. ये अंदर जब होगी तब हम बाहर कर सकें. और जितनी तीव्रता से होगी, उग्रता से होगी, उतनी ही हमारी स्थिति ऊंची होगी, हम शक्तिशाली अनुभव होंगे. नहीं तो इस ज्ञान मार्ग में कोई अनुभव नहीं. ऐसे हजारों लोग चल रहे हैं, रेंग रहे हैं, बस उन्हें ही पता नहीं ऊंची उड़ान भरनी है, परवाज. अच्छा, ओम शांति.